کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے۔ میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینیولز، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں۔ آپ مجھ سے 9055130012 پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا canemsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں۔
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے، تو انتظار کیسا؟ ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666۔ ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس۔
ایشین فوڈ سینٹر 9057931338۔ آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے۔ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، گروسریز اینڈ سٹیفلز، بریڈ، ڈیری اینڈ ایگ، بیوریج اینڈ کنفیکشنری، برانڈیڈ فوڈز، پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ، سویٹس اینڈ سموساز۔ Order now for in-store free pickup 9057931338. Home delivery is also available. Asian Food Center 9057931338. Asian Food Center.
جی صاحب، پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا جو گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی ایک تحریر میری نظر سے گزری، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ مصطفی اللہ خان صاحب کے سیگمنٹ کو اگر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی آن آر سائٹ، اور آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ آج 7:15 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایک چھوٹا سا انٹرویو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ انٹرویو تو نہیں، ایک انفارمیشن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ میرے ساتھ ہوں گی آئی بلیو سو سمینہ صاحبہ کو۔ میں ریکویسٹ کروں گی کہ سمینہ، اگر آپ مجھے ٹائم دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آج پردیپ جی لانگ ٹرم کیئر کو کے شیئر بھی کر کے گئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ لانگ ٹرم کا خیال نہیں کرتے۔ یقیناً جب تک تکلیف آتی نہیں، میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اس عمر کو بھی دیکھوں گی، دس پتہ لائف از۔ تو لانگ ٹرم کیئر جو ہے کتنی ضروری ہے، اور جتنے لانگ ٹرم کے کووڈ کے دنوں میں لانگ ٹرم کیئر کا ذکر بھی ہم نے بہت سنا، یہاں پر جب ہم داخل ہوتے ہیں یا کوئی پیشنٹ چلا جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کی کاسٹس ہیں، اور بعض اوقات بچے نہیں تو ماں باپ نے جب جنہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے انشورنس لی ہوتی ہے۔ میں ڈچ کمیونٹیز کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ اگر سٹیلز اور میکلاکلن کے پاس چلے جائیں نا، تو وہاں پہ آپ کو 3 یا 4 بلڈنگز نظر آئیں گی۔ تو یہ جوانی میں ہی جو ڈچ لوگ ہیں وہ اس کی ممبر شپ لے رہے ہیں، وہ پر منتھ 100-200 جو بھی ہے وہ پے کرتے رہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں کریٹیکل دور آیا زندگی کا تو پھر اس بلڈنگ میں کیا ہے کہ آپ کی کینٹینز بنی ہوئی ہیں، یہاں پر نرسنگ ہوم ہے، باتھ روم میں سوئچ ہے، جم ہے، کمرے میں سوئچ ہے۔ تو اولڈ ایج میں آنے کے بعد جب پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس بلڈنگ میں آپ لوگوں کو جگہ مل جاتی ہے۔ یہ ڈچ کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کی، پاکستانی کمیونٹی کی بھی کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی ویژن ہے کہ ان کے بچے ینگ ہڈ میں ہی وہ ممبر شپ لے لیتے ہیں اس کی، تاکہ جب اولڈ ایج میں پہنچے تو وہ پھر ان بلڈنگز میں اگر ان کو ضرورت ہو تو ان کو رہائش مل جائے، جہاں پہ نرس بھی ہر وقت آپ کے پاس ہوگی، خدا نخواستہ اگر باتھ روم میں ایمرجنسی ہوگی، بیڈ روم میں 24 آورز نرس ہے، 20 کھانا سب کچھ انکلوڈیڈ ہے۔ یو ول ناٹ بی اے ٹیننٹ مگر آپ نے ساری زندگی اس کی ممبر شپ۔ تو چلیے اگر وہ نہیں ہے تو آپ لانگ ٹرم کیئر انشورنس بھی رکھ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر بچے نہیں اس وقت کیئر کر سکتے۔ یس، وی ڈو ایکسپیکٹ کہ ہم اپنے بچے، آج ہی جس شخص کا سیناریو جس نے مجھے اس بات کو بار بار کرنے پہ جو مجبور کر رہا ہے، جوانی میں وہ اپنی بیوی کے بغیر ہو گئے، ظاہر ہے بچے ماں کے پاس تھے, بچے نہ کیئر, بچوں کو نہ کیئر کر سکے, مگر آج وہ جس سٹیج کے بیچ میں ان کو ان کے بچوں کی بھی ضرورت ہے, ان کو ان کی بیوی کی بھی ضرورت ہے, بیکاز دس از ایدر اے مین ہو کین ٹیک کیئر آف اے مین اور ایدر اے وائف ہو کین ٹیک کیئر آف دا وائف. تو جو بدلتا زمانہ اور بدلتے حالات ہیں اس کے لحاظ سے ہاؤ امپورٹنٹ از لانگ ٹرم کیئر. تو کینیڈا میں, آنٹیریو میں گورنمنٹ کے بھی لانگ ٹرم کیئر سینٹرز ہیں, بٹ اسٹل اس میں بھی اسسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پے ضرور کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ, جو کہ 1300, 1400, 1500, 1800 تک کم از کم ضرور بنتا ہے. بٹ اس کے بعد جیسے ماجد بھائی میں وہی سوچ رہی تھی کہ میں یہ ہماری سیمیٹری ہے یہ میکلاکلن اینڈ بوورڈ کے پاس جو قبرستان ہے نا, تو قبرستان سادہ سا قبرستان ہے, قبرستان مر گئے تو قبر کی قیمت پے کرنی پڑتی ہے اور کفن کا پیسے دینے پڑتے ہیں, آپ کے جنازے کو وہاں تک لے کے جانے کے پیسے پڑتے ہیں, اس کے بعد جب آپ ہو گئے تو اب وہ قبر آپ کی ہے. ٹھیک ہے, ہر دو مہینے تین مہینے میں قبرستان والے, آپ نے ایک دفعہ پے کر دیا اور قبرستان والوں کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مینٹیننس پیرا ہوتی رہتی ہے. آف کورس ان کو ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے اور بہت سی ایسی چیزوں کی ملتی ہے, مگر اب جو لوگ, ہر آدمی ان قبروں میں دفناتا بھی نہیں ہے. دیر آر قبرستان جو انڈور قبرستان ہے, بہت خوبصورت انڈور قبرستان ہوتے ہیں, تو وہ دیوار کے اندر ہی بکسے بنے ہوتے ہیں اور بکسے یوں لگا دیے جاتے ہیں, ان کا جو ہال ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اب اگر آپ نے وہ قبر خریدنی ہے تو اس کا تو خرچہ بہت زیادہ ہوگا, وچ آئی کینٹ افورڈ. آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟
دے آر ان تھاؤزنڈز,
ناٹ تھاؤزنڈز, یعنی بیسوں ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈ کو کراس کرتی ہے اس قبر کی قیمت.
جیسے آپ نے گھر خریدا ہے ویسے ہی اپنی ماں خریدا.
وہ تو وہ دیوار کے بیچ میں ہی نا جگہ بنی ہوتی ہے جس کے بیچ میں تابوت چلا جاتا ہے اور پھر کیسے کریمیشن ہوتی ہے, واللہ اعلم بالصواب. مگر اچھا, جو لوگ ان کو پھر وزٹ کرتے ہیں ان قبروں کو, ان لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام, کافی کا انتظام, یعنی اٹس اے فائیو اسٹار, اٹس جسٹ اے فائیو اسٹار. یا قبرستان بھی فائیو سٹار ہوتے ہیں, یا یہی ہماری تو کمزور سی سیمیٹری ہے قبرستان ہے برمپٹن والا, ہم تو وہ $600 کا تابوت لیتے ہیں, مگر جو لوگ دفنانے والے ہیں وہ کا تابوت بھی 8-8 ہزار کا آتا ہے
آرام سے.
آئی پرسنلی سو ایک قبر جب یہ برمپٹن سیمیٹری میں داخل ہوتے ہیں نا, تو بالکل سامنے, آپ یقین کیجئے وہ گولڈ کا تابوت تھا. اور میں نے کہا یہ کیا مقصد ہوا, پھر میں نے اس بندے سے جا کے پوچھا, اس نے کہا کہ جو ایکچوئل کیسکیڈ ہے وہ اس گولڈ کے کیسکٹ میں جائے گا اور اس کیسکیڈ کو سیل کر دیا جائے گا. یہ بالکل وہی حساب ہے جیسے ممیز نہیں بنا کرتی ہوتی تھی, ممیز والا سسٹم ہوگا, یعنی جب اس باڈی کی گوروں میں جب دفنایا جاتا ہے تو ایمبامنگ ہو جاتی ہے باڈی کی, اندر سارا کچھ نکال دیا جاتا ہے, ایمبامنگ ہو گئی. اب تابوت کے اندر باڈی ہے, باڈی وہ تابوت کو اس لوہے کے صندوقچے میں بند کر کے قبر میں اتار دیا جاتا ہے. وہ صندوقچہ اٹ سیلف واز بڑا مہنگا, اس صندوقچے کو اتارنے کے لیے باقاعدہ کرین وہاں پر موجود تھی. تو مطلب پھر بھی میں نے کہا کوئی نہیں, قبرستان تو ہمارے والا ہی ہے نا,
نیبر ہو جائیں گے اس کے.
تو سمین, اچھا ٹاپ آف دا آور کا بھی وقت ہوا ہوا ہے, میں دو تین آپ سے باتیں کروں گی, مگر ملاقات دوبارہ ہوتی ہے 6 بجے, ساتھ رہیے گا, اسٹے ٹیونڈ. مگر اس وقت ہم آپ کو لے کے چلیں گے نیوز کی جانب. ہاں,
چلیں گے ہم آپ کو علی سید,
علی سید سے ملاقات کے لیے. جتنی دیر علی سید آتے ہیں, لیجیے صاحب ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اب قوم کا عالم دیکھیں, آپ کو پتا ہے نائکی نے, ایک کمپنی ہے نائکی کے جوتوں کا ایک ڈیزائن تھا, یہ ایک کمپنی ہے, اس کا نام ہے, ایک تنظیم ہے, فلاحی تنظیم ہے, تقریباً 600 جوتے تیار کیے ہیں. اور یہ 600 جوتے کیا ہیں, انہوں نے جوتے کا سٹائل نائکی والا لیا ہے, تو اس کے نیچے جو کشن ہے اس میں لال رنگ کی سیاہی بھری گئی ہے. اور یہ دیکھیے اس لال سیاہی میں اس جو تنظیم ہے کولیکٹیو ایم ایس سی ایچ ایف, کولیکٹیو ایم ایس سی ایچ ایف یہ ایک تنظیم ہے, اس کے جتنے ممبرز ہیں 600 ممبر ہیں اس کے, تو اس لال سیاہی جو اس کے نیچے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے نا لال سیاہی, اس میں ہر ممبر نے اپنا ایک خون کا قطرہ بھی ڈالا ہے. اچھا اب یہ جو ڈیزائن ہے نا بیسیکلی یہ نائکی کا ڈیزائن ہے, دیکھ لیے اوپر اس نے نائکی کا وہ بھی بنایا ہوا ہے. اچھا جوتے کے اوپر لکھا ہوا ہے لیوک, اب امیجن کیجیے, آئی واز سیڈ, یہ شیطانی جوتے ہیں. یہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا ہے لیوک 10:18. لیوک 10:18 کیا ہے؟ بائبل کی ایک سورہ اور اس کی آیت ہے لیوک 10:18. لیوک 10:18 جو آیت ہے بائبل کی, اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ شیطان جو برے کام کرتا ہے کس طرح وہ جنت سے اترے گا اور دوزخ کے بیچ میں جائے گا. اور اس کے اشتہار میں جو شخص دکھایا ہوا ہے وہ شخص ایک درخت سے اترتا ہوا دکھایا ہوا ہے, یعنی شو یہ کیا ہوا ہے, یہی لیوک 10:18 یعنی چیپٹر 10 آیت نمبر 18 جو چیز دکھائی ہوئی ہے لیوک بائبل کا. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ کتنی جرت ہو گئی لوگوں کی کہ چاہے وہ بائبل ہے چاہے وہ قرآن ہے ان آیات کو جوتوں کے اوپر لکھا جائے. آپ کو یاد ہوگا ایک اولمپکس میں ایک فٹ بال بنایا گیا تھا جس پہ اللہ لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, بعد میں اس کو بین کروایا تھا. اب انہوں نے کیا کیا,
اللہ نہیں لکھا ہوا تھا اس پہ, پوری دنیا کے فلیگز بنے ہوئے تھے, سعودی عرب کا جو فلیگ تھا اس پہ لا الہ
لا الہ, نو 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 نو, دیر واز این ادر عامر, بلکہ اگر آپ وہ بھی دکھا سکو تو بہت اچھا ہوگا. یہ نیچے ہی ہے, یہ نائکی کے جوتے صابن پر بنے شیطانی لچھے اولمپکس کے قابل اعتراض. اولمپکس میں ایک فٹ بال بھی بنا تھا اور اس فٹ بال کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا, بلو اینڈ بلیک کے کمبینیشن پہ اندر اللہ لکھا ہوا تھا, ٹھیک, فٹ بال کے اوپر. آئی ہیو نو کلو. اور یہ جو شیطانی جوتے ہیں اس کے بارے میں, اب ان شیطانی جوتوں میں دیکھیں نائکی کا سمبل استعمال کیا گیا ہے. اب نائکی نے ان کو سو کر دیا, کیوں سو کیا؟ ایک تو یہ کہ اس پہ لیوک 10:18 یعنی بائبل
کے کوئی تعلق نہیں,
چیپٹر 10 آیت نمبر 18 اس کا ذکر ہے. اور نائک لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ شاید نائکی نے اپنا جو سب کانٹریکٹ تھا وہ اس کمپنی کو دیا تھا کہ یہ جوتے تیار کرو. ایکچولی جوتے کا جو, یہ دیکھیے یہ فٹ بال جس میں اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے, ٹھیک, اور نائکی نے یہ جو کمپنی ہے کولیکٹو ایم ایس سی ایچ ایف, اس کے خلاف نائکی نے اب ان کو سو کر دیا ہے. بیکاز کل کلاں کو اس پہ بائبل کا نام لیوک 10:18 لکھا ہوا ہے, یعنی آپ بائبل کی سورہ 10 اور 18 کا حوالہ جوتے کے اوپر دے رہے ہیں. یو کوڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ ایلس ٹو, پیپل آر انسین. اینی ویز آئی ول ٹیک یو ٹو علی سید. سستا روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار, اور اب تو یہ مہنگا بھی نہیں. میں آنےسٹ ٹو گاڈ, میرے آج ایک بہت پیارے بھائی ہیں محمد بھائی, انہوں نے کہا عارفہ بہن آپ کی obligation ہوتی ہے کمرشلز کے لیے. آئی ایم ناٹ obligated فار دس کمرشل, نو. یس, اگر آپ کا اکاؤنٹنٹ بہترین ہے تو یو کین فائل یور ٹیکس ریٹرن اینڈ یو گیٹ میکسیمم ریٹرنس. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میری دوستی میرے جیسے سے ہوگی تو مجھے اپنے برابر پہ ہی لے کے جائے گا, مگر اگر اوپر ہوگی تو مجھے اوپر کی طرف ہی کھینچے گا نا. تو علی سید ونڈرفل مین, آئی ریکویسٹ یو کہ اپنے ٹیکس کے لیے, اور اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں, ٹرک ڈرائیور ہیں, آپ ایون ٹیکسی ڈرائیور ہیں, آپ اوبر چلاتے ہیں, آپ کا کوئی ریسٹورنٹ ہے, آپ نیو امیگرنٹ ہیں, ڈونٹ بی اسکیئرڈ اینڈ ڈو ناٹ کمپرومائز, کانٹیکٹ علی سید. نمبر میں آپ کو دے دیتی ہوں, ویری ایزی ٹو ریمبر, اور اگر کہیں بھولے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئیے, یو ول فائنڈ آل دا ڈیٹیلز, ہماری فیس بک پہ, اور کچھ نہیں, میرا نمبر تو یاد ہی ہے نا, مجھے کال کر لیجیے گا, آئی گیو یو. ان کا نمبر ہے 6477861216.
کرتے کیا ہیں یہ؟
سی پی اے ہیں.
کیا کیا مطلب, مجھے صاحب بندے کو تو سی پی اے کا نہیں پتا ہے, تو آپ ذرا بتا دیں.
میں ابھی آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں علی سید.
ایک اور ڈنر ہو گیا سر, ایک اور ڈنر ہو گیا,
ڈنر ہو گیا. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا میں ابھی ابھی پردیپ جی تھے, پردیپ جی نے اپنا تعارف خود نہیں کرایا تھا.
ہاں
تو علی سید اپنا تعارف خود کراتے ہیں.
نہیں مگر تھوڑا سا تو
بھائی, میں نے تو بتا دیا کہ ہی از اے ونڈرفل اینڈ اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ. علی سید اپنا تعارف کرائیے پلیز.
جی جتنا اچھا آپ نے انٹروڈکشن دیا میں اس کو میچ نہیں کر سکتا, تو آئی ول گو ود یور انٹروڈکشن. کہ کیا کہتے ہیں اس کو, وی ڈو پروفائڈ اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس سروسز, اور سی پی اے ہیں. ये तो आपको भी पता होगा सीटीए क्या है, तो इस वजह से
सर्टिफाइड चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट
पक्के से पक्के होते चले जा रहे हैं, तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि
प्रोफेशनल अकाउंटेंट। आरफा तुम किस दिन पैदा हुई थी? तुम्हारी किस्मत पे मुझे दुख आता है, रोना आता है। मैं कभी कभी अपने बेटे को कहती हूँ बेटा पढ़े लिखे होते हमें हम तो तुमको खत लिखते। चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। देखिए साहब मैंने इसको ऐसे ही मसला बना लिया, बस बुढ़ापा है, बुढ़ापे में नई चीजें याद रहती। मगर एक बात मैं बताती हूँ, जब मैं मेरी जवानी थी ना, मैंने कभी किसी बूढ़े को बुढ़ा नहीं कहा था, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे क्लासमेट्स कहा करती थी तो मैं कहती तो बस तुमने भी तो होना है बूढ़ा। तो ये माजी जमाल और अली मुझ पे हंसते हैं ना, जब ये मेरी उम्र में आएंगे इनकी याददाश्त भी ऐसे होगी, देख लेना।
उसमें तो काफी दिन है ना अली सैयद, मेरे आप में इनकी उम्र पहुंचने के लिए बहुत देर है।
नहीं मगर जितना वो फ्रेश लगती हैं, आई थिंक क्या कहते हैं उसको, आई थिंक वो ऑलरेडी मेरे से ज्यादा फ्रेश लग रही हैं। तो
नो मेरा बेटा, आई स्वेयर टू गॉड आई टेक द प्राइड, खुदा गवाह है मैं आई टेक द प्राइड ऑफ यू, यू आर। और इस दफा जो आपने बात की है ना कि यू विल केयर माई लिसनर्स, मैं तो फिदा हूं आप पे। बताइए आप हमें क्या फायदा है आपसे, क्योंकि वो कहते हैं ना जिसने शराब पी नहीं उसको पता क्या शराब का क्या मजा है, तो जिसने चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सर्विसेज नहीं दी। तुम लोग मेरे पे
गलत मिसालें ना दिया करें यहाँ पर आके, बच्चे भी सुन रहे हैं। अली सैयद 6477861216 चार्टेड प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। अब जरा अपनी सर्विस के मुताबिक बताइए
जी। माजी भाई आशा जी, हम लोग मिसागा में बेस करते हैं, हमारा ऑफिस मिसागा में है, मगर हम डील करते हैं मिसागा, ब्रैम्पटन, ओकविल, बर्लिंगटन, नॉर्थ यॉर्क, पूरे जीटीए में हम लोग हमारे क्लाइंट्स हैं। हम लोग टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरीली फंक्शन हमारा टैक्स सर्विसेज है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है। तो जो भी स्मॉल बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है, हम उसको पूरा करते हैं और प्रोफेशनली पूरा करते हैं। और यही डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट में, जिसके ऊपर एप्लीकेशन होती है अपनी बॉडी की, गवर्निंग बॉडी की, कि हमने प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशनल तरीके से अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, और वो एडवाइस करना होता है क्लाइंट के लिए जो उनके लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है, प्लस वाइल कीपिंग इन माइंड के वो हम कोई के वो कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे वो अपने आप को कोई अननेसेसरी रिस्क से एक्सपोज करें, कोई सीआरए के ऑडिट से या बैंक रिक्वायरमेंट से अननेसेसरीली एक्सपोज ना करें। तो एज अ प्रोफेशनल हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम क्लाइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका टैक्स सिचुएशन एग्जैक्ट क्या है, और उसके बेस के ऊपर हम उनको एडवाइस करते हैं। आजकल जिस तरह टैक्स का सीजन चल रहा है, और आजकल जो मेन जो है हमारा फोकस है वो पर्सनल टैक्सेस के ऊपर है, पर्सनल टैक्स प्राइमरीली है, और उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनका भी टैक्स, जिस तरह अगर आप ऊबर चला रहे हैं या आप कोई और राइड शेयर में लिफ्ट चला रहे हैं या कोई भी आपका स्मॉल बिजनेस है और आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम उनको आजकल उनको हम फुल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जो 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 आजकल मैं काफी ज्यादा एक चीज देख रहा हूँ आमतौर पर लोगों से जो बात करता हूँ, वो उसमें उनका एक एक दो मिसकंसेप्शन हैं टैक्स को लेके, जो कि मैं सोचा था कि अगर आप मुझे दो मिनट दें तो मैं वो
बाय ऑल मीन्स द माइक इज योर्स
जी। थैंक यू सो मच माजी भाई। मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो आपके जो के जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम है जिनकी, उनका क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपका एम्प्लॉयर जो होता है हर पेचेक के ऊपर आपसे टैक्स होल्ड करता है, तो अक्सर आमतौर पे साल के एंड में उनका एक मिसकंसेप्शन होता है कि क्योंकि हमने टैक्स अपना दे दिया हुआ है हमारे ऊपर फर्दर टैक्स लाइबिलिटी अब और नहीं होगी और हमें हर हालत में टैक्स रिफंड ही मिलेगा गवर्नमेंट से, तो उसका ये 100% ये 100% बात एक्यूरेट नहीं है। आपका टैक्स जो एम्प्लॉयर है वो वही टैक्स विदहोल्ड करता है जो आपने उसको शुरू में बताया होता है। जब आप जॉब शुरू करते हैं तो एक फॉर्म होता है T1D फॉर्म, वो आपसे आपका एम्प्लॉयर फिल करवाता है, तो आपका जो टैक्स डिडक्ट होता है पे चेक के ऊपर वो उस T1D फॉर्म के ऊपर बेस करता है। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन उस जमाने के हिसाब से एक्यूरेट दिया, मगर टाइम गुजर गया, आपको जॉब शुरू किए हुए, आपके लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आए हैं, आप यूनिवर्सिटी में थे, ग्रेजुएट हो गए, आपने दो जॉब शुरू कर दी हैं और आपकी शादी हो गई है, जो भी चेंजेस हुई हैं, आपका टैक्स उससे इम्पैक्ट करता है, तो आपकी डिडक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो अक्सर ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने टैक्स जमा कराया होता है, और जब हम उनका टैक्स सारा फाइल करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो उनके ऊपर अब थोड़ी सी और टैक्स लायबिलिटी निकल आती है, तो उनको काफी ये सरप्राइज होते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये बेसिकली टैक्स आपकी इनकम के ऊपर होता है, अगर आप सारा साल ज्यादा टैक्स जमा कराएंगे तो आपके पास कैश कम होएगा सारा साल, मगर एंड में आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा। अगर आप टैक्स कम जमा डिडक्ट करवाएंगे एम्प्लॉयर के पास, तो आपके पास सारा साल थोड़ा कैश फ्लो बेहतर होगा, मगर साल के एंड में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन थी, इसकी काफी वजह होती है। आई एम नॉट सेइंग कि एम्प्लॉयर गलत है या वो गलत टैक्स काट रहा है, इट्स जस्ट कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन पुरानी हो चुकी होती है, टैक्स में रूल्स आ चुके होते हैं, इस वजह से सोर्स के ऊपर जो विदहोल्डिंग होगी, जो टैक्स डिडक्शन होता है, वो क्लोज होता है आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के, मगर ये श्योरिटी नहीं है कि वो 100% होएगा। तो जस्ट गेट द सेकेंड ओपिनियन, जब आपका टैक्स जब आप फाइल करने जाते हैं तब आपको असल में पता लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो सिर्फ इस ख्याल में मत रहें कि आपने टैक्स क्योंकि डिडक्ट करवा लिया हुआ है तो आपको फर्दर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अली 6477861216 अली सैयद का फोन नंबर है, चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट CPA है। कोई जो ये छोटी छोटी कंपनीज होती है या इवन बड़ी कंपनीज, मीडियम क्लास कंपनीज, इनके साथ आपका कुछ ऐसी भी डीलिंग होती है कि आप मंथली उनके सारे बिल्स वगैरह लेके जमा करके आप उनको सेटिंग करते रहते हैं पूरे साल के एंड तक के लिए, और मंथली वो कुछ पे करते रहे आपको ताकि उन पे आखिर में आके बर्डन ना हो?
एक तो टैक्स जो CRA का, अगर आप टैक्स के लिहाज से बात करें तो जो आमतौर पे जो कंपनीज होती हैं उनके वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स करती हैं, तो उनको हर तो उनकी जो लास्ट ईयर की जो टैक्स बिल होता है, जो टैक्स उनका जो लायबिलिटी होती है, उसको बेस करके उनका नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट जो होता है या इंस्टॉलमेंट वो सेट होती है। उनको हर अपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट टैक्स की पे करनी होती है, और उसकी वजह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यही होती है कि एकदम कंपनीज के ऊपर या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के ऊपर जिसका भी टैक्स बिल 3,000 से ज्यादा का है उसके ऊपर टैक्स की उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट देना जरूरी है। तो वो जब कैलकुलेट करते हैं, और वो इसीलिए होता है कि अगर साल के एंड में किसी के ऊपर $10,000 या $12,000 का टैक्स का एकदम लाइबिलिटी आ गई है तो वो कैसे देंगे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए CRA का प्लान होता है कि वो हर एक से इंस्टॉलमेंट्स में लेते रहें पैसे, ताकि आप अपने अकाउंट में पे करते रहें, और अगर आपने ज्यादा पे कर दिया है तो आपको एंड में टैक्स रिटर्न मिल जाए, रिफंड आ जाएगा, और अगर आपने कम पे किया है तो आपको थोड़ा सा जो यू जस्ट हैव टू मेक अप ऑन इट।
सो यू लुक आफ्टर दैट पार्ट टू, यू लुक आफ्टर दैट पार्ट टू कि भाई अगर आपके पास,
वी ऑलवेज डू दैट, जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, हम लोग उनकी टैक्स इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, और हम क्या कहते हैं, मेक श्योर कि हम बहुत ज्यादा उसके दो तीन तरीके हैं टैक्स इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करने के, सो वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन। होता ही है कि कोई एक सोल्यूशन हर एक के लिए फिट नहीं होती है, हर बिजनेस ओनर की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर बिजनेस ओनर का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है जिसको देख के हमने सोल्यूशन निकालनी होती है कि इनके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। ये अकाउंटिंग में भी जब हम अकाउंटिंग किसी का अकाउंटिंग प्रोसीजर्स डिजाइन कर रहे होते हैं किसी क्लाइंट के, तब भी हम ये देखते हैं कि अगर किसी का रेस्टोरेंट है या कोई ऑनलाइन सेल्स कर रहा है या कोई किसी का रिटेल स्टोर है, तो किस तरह उनका अकाउंटिंग सेटअप किया जाए कि वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो टाइम वेस्ट ना करें अपने बैक ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर आपका मेन काम क्या है, आपका मेन काम है कि आप वो चीज सेल करें जो कि जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं, आप रेवेन्यू जनरेट करें, नॉट कि आप बैक ऑफिस के लिए टाइम वेस्ट करें, हर हफ्ते जो है 4-4, 6-6 घंटे लगाएं। यू कैन स्पेंड दैट टाइम आइदर विद योर फैमिली और यू कैन स्पेंड दैट टाइम टू इंटर योर बिजनेस। तो वी हेल्प देम सेट अप, बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं वो उनकी अपनी ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके अपने फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो ये सारा कुछ उसके ऊपर बैठ के डिजाइन किया जाता है।
एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड या अपना बिजनेस नहीं ओन करते, तो उनके लिए तो आपके दरवाजे हमेशा खुले हैं,
हमेशा हमेशा से खुले हैं आपके लिसनर स्पेशली, उनके लिए तो हमारे लिए दरवाजे हमेशा से खुले
हैं। थैंक यू सो मच।
एक चीज और मैं बता दूं कि जैसा मैंने भी आपको पेरोल का बताया था, एक उससे रिलेटेड चीज है, मैं इसके ऊपर पेरोल के ऊपर आगे भी अगले शो में बात करूंगा, क्योंकि ये काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है। एवरी डे आई गेट एटलीस्ट 2-3 कॉल्स जिधर लोग ये कह रहे थे कि हम टैक्स कटा चुके हैं, अब हम क्यों टैक्स दें। और एक चीज ये है कि माजिद जिन लोगों ने सर्व लिया था, आपको याद है लास्ट ईयर,
वो मेरे पास क्वेश्चन था, वो नेक्स्ट टाइम आपसे करूंगा मैं।
तो उसका एक छोटा सा मैं आपको इसका एक दे दूं कि वो जो 2000 था, मैंने लास्ट ईयर भी मुझे याद है बताया था कि वो टैक्सेबल इनकम है और गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया हुआ। तो अगर आपने सिर्फ लिया था 10,000 या 12,000 तो अब टाइम आ गया है उसके ऊपर टैक्स देने का। तो इट्स ऑलमोस्ट सर्टेनिटी, ये गारंटी कि आपने अगर सिर्फ लिया था और उसके बाद आपने कहीं और भी जॉब की थी, सो यू आर लुकिंग एट $2,000 to $3,000 और $1,500 ऑफ टैक्स दैट यू ओ टू द गवर्नमेंट।
इसके मुताबिक बात करेंगे और लोगों को अवेयरनेस दिलवाएंगे, क्योंकि वक्त आ रहा है, बड़ी जल्दी टैक्स का ही डेडलाइन आ रही है, तो इसमें सर्व वाले और ये जो कंपनीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं इनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। आई विल डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ टॉकिंग टू यू एंड लेटिंग पीपल नो व्हाट दे कैन डू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। 6477861216 अली सैयद का फोन नंबर है, 6477861216 इनकी डेजिग्नेशन ना डरिए, इज अ वेरी लर्नेड पर्सन अली सैयद, सिर्फ अली सैयद कह देते हैं, चार्टेड प्रोफेशनल अकाउंटेंट हम कहते हैं तो शायद लोग समझते हैं कि यार पता नहीं कितना चार्ज करेंगे। आप जाए इनसे बात जरूर करें, 6477861216 अली सैयद का फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका,
थैंक यू सो मच।
अली सैयद से हमने आपकी बातचीत करवाई और साहब 5:25 और 7 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। दो स्पॉन्सर्स के पैगाम लेता हूं, इसके फौरी बाद भागती और दौड़ती हुई हमारे पास पहुंचेंगी शाजिया मलक साहब।
क्या आपकी पॉलिसी इस पेंडेमिक में आपको कवर कर रही है? मालूम कीजिए मुझसे कांटेक्ट करके। मैं हूं फजल वदूद, इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज से। मेरा नंबर है 9056075000। 27 साल का इंश्योरेंस और अंडरराइटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको एक ऐसा प्लान दिलवाया जाए जो कि बेहतरीन हो और गारंटेड लोएस्ट रेट पे हो। कॉल कीजिए 9056075000। और हाँ, हर जुमेरात शाम को चैनल 770 पे मेरा प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं बेहतरीन टिप्स इंश्योरेंस के बारे में।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं up to 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर, न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
कश्मीर कढ़ाई पॉइंट, बेहतरीन लजीज जायकेदार कढ़ाई या फिर करी डिशेस हैं, थाली या बारबेक्यू आइटम्स हैं, कढ़ाइयाँ बहुत मजे की हैं, वेजिटेबल्स और बिरयानी के लिए। दे आर जस्ट टेकिंग ऑर्डर्स ओवर द फोन, स्किप द डिशेस, उबर ईट्स या फिर डोर डैश। कश्मीर कढ़ाई पॉइंट, पाकिस्तानी एंड इंडियन कुजीन, 225 कैसल ओक क्रॉसिंग इन ब्रैम्पटन, 9057585099।
सब खामोश हो जाएं, एब्सोल्युटली सिलेंट, क्या कहते हैं, सिलेंट हाँ जी, एकदम सिलेंट हो जाए और उसके बाद अब कोई मुंह पे उंगली रख ले, हम और कान खोल लें अपने। पहुंच गई हैं पर शाजिया मलिक साहब, और क्योंकि इनकी सलोन अभी तक बंद है और वो आपको बताएंगी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरें, टोरंटो में क्या हो रहा है, ओंटेरियो में क्या है एंड कनाडा में क्या है, सारी की सारी खबरें लेके पहुंची हैं शाजिया
ملک جی. السلام علیکم آپ کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام. میں تو روز تو میں آپ کو پنجاب کے قصے سناتی ہوں نا, لیکن جو شرارتی بچے ہیں نا,
آج میں نے اور آپ نے میچ کر لیا.
ماجد بھائی گریٹ مائنڈز تھنک الائک, بالکل. اور جو میری اسکرٹ ہے اس کے اندر یہ ایسے جو آپ کی شرٹ کا کلر ہے نا براؤن, وہ ہے.
او ہو,
تو بالکل ملے ہوئے ہیں دل
آج تو بس
دل ملے ہوئے, بالکل
دلوں کو کیا چھوڑ دیں, اپنے
چھوڑ دیں آپ, اپنے حال پہ چھوڑ دیں,
اپنے حال پہ چھوڑ دیں آپ. ہاں جی,
تو روز تو میں پنجاب کے شیطان کاکوں کی آپ کو بات سناتی ہوں نا,
جی
آج کراچی کے ایک شیطان کاکے کی میں آپ کو بات سنا رہی ہوں.
کراچی والوں تیار ہو جاؤ.
ہاں ہاں, وہ ٹیچر تھی نا, اس نے بچے سے پوچھا, اس نے کہا اچھا ایک ورڈ میں نے تمہیں بتانا ہے, دوسرا تم نے مجھے بتانا ہے. تو وہ ٹیچر کہتی ہے اے فار ایپل, اب اے سے تم آپ کوئی اور لفظ بتاؤ. تو وہ آپ کی طرح کا تھا, شریر قسم کا بچہ, تو کہتا ہے ایسے نہ مجھے تم دیکھ لیں. مجھے آپ کے جو کراچی والے بچے کتنے کوئی شیطان
ہے جی, کیا بات ہے جی, ایسے نہ مجھے دیکھو.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی,
دل سے لگا لوں گا
لگا لوں گا. اور اسی طرح کا ایک اور شیطان کاکا تھا ہیں, وہ جا رہا تھا ادھر جو کراچی میں, آپ کو پتا نا ٹریفک بھی بڑی وہ ہوتی ہے, ہمارے دو ہی تو بڑے سٹی ہیں لاہور کراچی, جس میں ایسی ٹریفک ہے کہ جو جنہوں نے ان دو شہروں میں گاڑی چلا لی نا مجد بھائی, دنیا کے ہر حصے میں وہ گاڑی چلا سکتے ہیں, ہر حصے میں, نہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوئے گا, نہ گاڑی لگے گی, نہ کچھ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کراچی میں وہ ایک کوا تھا بےچارا, تو اس کی ٹکر ہو گئی ایک گاڑی سے, تو وہ بے ہوش ہو گیا. تو وہ گاڑی والے کو بڑا ترس لگا, اس نے کہا اوہ یہ میں نے معصوم پرندہ جو ہے اس کو مار دیا ہے. تو اٹھا کے وہ اپنے گھر لے گیا, اس کو ذرا پانی شانی پلایا, کوئی اس کو وہ وارمتھ تھوڑی سی دی, اور اس کو کیج میں ڈال دیا. تو جس وقت وہ کوا اٹھا نا, اس کو ہوش آئی, کہہ رہا ہے لے بھائی یہ کیا میرے ساتھ ہوا, بھائی صاحب مجھے لگتا ہے میں نے کسی بندے کو مار دیا اور ابھی اس نے میرے کو کماڑی کے جیل میں ڈالا ہے. دیکھ لے مجھے کوئی بھی پاکستان کے کتنے انٹیلیجنٹ ہیں, کماڑی کی جیل. ہاں جی,
تو وہ گیا کسی کے پاس, تو بیٹھا تھا وہ دوسرا آدمی کام کر رہا تھا اپنے آفس میں, تو یہ بھائی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. تو تھوڑی دیر بعد اس کا خیال آیا, اس نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ عقل مند سے بات کرنا ایک مہینہ کتابوں کے پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. وہ آدمی جس سے یہ کہا اس نے بڑا خوش ہو گیا, اس نے اپنے کام بند کیا, کہنے لگا کہ کر لو یار, چلو کر لو باتیں یار, آج میں فری ہوں, عقل مند نہیں ہوں, مجھ سے بات غلط
فہمیاں یا خوش فہمیاں.
خوش فہمیاں,
مجد بھائی اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا, خوش فہمیاں
اس کا کوئی علاج نہیں.
ہاں جی, بس وہ ایک لڑکا تھا نا اسی طرح کا, آپ کی طرح کا شریر سا, تو وہ بیٹھا رہتا تھا ہر وقت اپنی تعریفیں کرتا رہتا تھا.
اچھا,
تو اس کی بیوی بڑا تنگ آ گئی اس سے, اس نے کہا کہ بھئی تم کیا ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہو. کہتا ہے اب شادی تم جیسی عورت سے ہوئی ہے, تم تو کرتی نہیں ہو, میں نے اپنی پی آر خود کرنی ہے, اپنی پی آر میں خود کرنی
ہے, بتاؤں گے میں کون ہوں,
میں کون ہوں. ہاں مجھے تو پی آر کا بڑا جو ہے نا,
آفرز بھی آتے ہیں,
آفرز بھی آتے ہیں, تو یہ پی آر کا کام ہی ہے نا, پی آر کا کام, پی آر کا تو کام,
پی آر یا پی آر,
بس پی آر بولتے ہیں, پی آر بولتے ہیں, ایک ہی بات ہے. ہوتی ہے نا لابنگ کمپنیز پی آر کرتی ہیں وہ آپ کی, پھر تو وہ اس پی آر سے آپ بڑے دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگا جی تم تو کرتی نہیں ہے, تو اپنی خود کی پی آر میں نے خود کرنی ہے نا, تو تاکہ لوگ میرے پیچھے لگے. مجد بھائی
ایگزیکٹلی, پی آر سے پیار ہوتا ہے.
ہاں مجھے لگتا ہے یہی آپ بھی کالج میں کچھ یہی کچھ کرتے ہوئے
بڑا کچھ کیا جی.
ہاں ہاں,
وہ پھر میں نے کہا تھا آپ سے کہ ایک وقت میں نہ بتایا نا, آہستہ 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 آہستہ.
ہاں یہ جو ویسے مجد بھائی آج کل یہ جو آپ نے سٹائل اپنایا ہوا ہے نا, یہ کافی خواتین جو ہے آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں.
ارے ارے,
یہ کیا چکر ہے, یہ ہمیں چکر بتائیں, کیونکہ میں آپ سے انتہائی جیلس ہو رہی ہوں دو چیزوں کے پیچھے. ایک تو آپ انتہائی پتلے ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ جو ہے نا بتانے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں میں بڑا ہینڈسم ہو رہا ہوں.
ہاں جی,
اور دوسرا جو ہے آپ نے ساری جو لڑکیاں ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو ماجد بھائی تھوڑے دنوں میں ہماری تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی, اس لیے میں سخت جیلس ہو رہی ہوں آپ سے.
آپ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں آپ کے پیچھے لگے,
کوئی تو آنا چاہیے نا.
اچھا کوئی تو لگے,
کوئی تو آنا چاہیے نا,
کوئی
تو لڑکیاں آئیں گی تو ان کے کوئی بھائی بھی آ جائیں گے, ان کو بھی کھینچ لیں گے نا. مجد بھائی آپ سمجھتے نہیں اندر کی بات جو ہے,
فرسٹ اسٹیپ ہے.
ہاں یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, جیسے یہ ابھی برامپٹن کے اندر میڈیکل اسکول کھلا ہے, یہ فرسٹ اسٹیپ,
فرسٹ اسٹیپ ہے.
ہاں جی, اس کے بعد بہت سارے ڈپارٹمنٹس آئیں گے. تو وہ جو لڑکی آئے گی
ڈپارٹمنٹ تو آنے دیں,
آنے دیں لڑکی تو آنے دیں نا, پھر اس کے چاچے مامے بھائی بھائی
اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے.
یس, اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے بھائی.
ہاں جی ہاں جی, میرے کول آئے گی.
دیکھو ذرا بھائی, آپ تو بات ہی نہیں سمجھتے. لے اتنی سمپل باتیں.
ہاں جی
ہاں, یہ کیسے کام چلے گا ادھر, یہ گھر میں نہیں ہوں گی پھر ایسے روز. اچھا اچھا جناب, मरीज भाई जो है ना मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपने देखा ही होगा। मैं मेरा बिल्कुल ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, रोज मैं आना चाहती हूँ बड़े सीरियसली खबरें देने। हाँ। मरीज भाई की आप देख ले, ये जरा आमिर जरा कैमरा डालो, कितनी मिस्चीवियस स्माइल है, ये सारी दुनिया कह रही है, ये देखें आप, ये देखें मरीज भाई का चेहरा देखें आप, तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जनाब, हमारी वेबसाइट पर जाएं, बहुत ही प्यारी वहां पर खबरें हैं और वहां पर ऊपर ही आपको लाइव रेडियो और लाइव टीवी के टैब्स नजर आएंगे, उर्दू की खबरें नजर आएंगी, लोकल बहुत सारी न्यूज नजर आएंगी। और अभी थोड़ी देर पहले जो इन्होंने डकफोर्ड साहब ने जो बड़ा सलूट पेश किया है जनरल हिलियर को, ये कोई अभी एक डेढ़ घंटा पहले आई थी, वो हमारी वेबसाइट पे है। इसके अलावा हेल्थ, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट की खबरें हैं, यूथ जोन में बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपको लेकर खोल के देखनी पड़ेंगी। जाहिर है
you got it.
आप उस सेक्शन में जाएंगे तो फिर आपको मिलेंगी,
क्लिक करना है बस,
क्लिक करना है सिर्फ आपने, बस इतनी ही तकलीफ देनी है उंगली को, ज्यादा कुछ नहीं देना, तकलीफ क्लिक करना है बस आपने। फिर वो नीचे कनाडा की और हमारी स्पोर्ट्स की खबरें, और राइट साइड पे हमारे जो हैं सारे क्या है माजिद भाई, स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है जी। तो आपने हमारे स्पॉन्सर्स को जरूर ही सपोर्ट करना है जनाब। अच्छा जी, हमारे पहले स्पॉन्सर्स हैं न्यू फातिमा ग्रोसर, कादर भाई होते हैं। आपकी कोई ग्रोसरी की कोई आपको चीज चाहिए तो आप जाने से पहले इनको फोन कर सकते हैं, वैसे तो सब कुछ ही होता है इनके पास स्टॉक, फिर भी इनका नंबर है 9058487000। एजियन फूड सेंटर, बहुत सारे स्टोर्स जो हैं उनसे आपको सर्व करते हैं, इनका नंबर है 9057931338। और जनाब आपको पता ही है कि जो है ब्रोस्टर चिकन अलबेक स्टाइल बहुत हेल्दी तरीके से अपने जो है खाने बनाते हैं, तो अगर आप मजे की तरह डाइट पे हैं और पतले दुबले और हैंडसम आप ही लगना चाहते हैं या हसीन लगना चाहते हैं, तो आप ब्रोस्टर चिकन अलबेक स्टाइल के सैंडविचेस मंगवा सकते हैं। और इनके जो नंबर है इनका 6477483444 है, 1758 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट कार्ब्रो,
40% लेस चिकन
बस भाई वो अब हमने चेंज कर दिया लाइन, 30% लेस ऑयल कर दिया।
अच्छा अच्छा अच्छा,
हाँ हाँ ठीक है ना, मैंने मेरा आपका दिल ना दुखे, ऐसा ना हो आप जाएं तो उधर टांग के बजाय ऐसे वो नंगी सी टंगी सी पड़ी हुई है ना,
उंगली हो,
हाँ उंगली हो, तो आपके भाई ये क्या है, ये मेरे साथ क्या तमाशा तुम लोगों ने लगाया है, मैंने इतने पैहे दिए हैं भाई, तो ये है ना, मैं आपको देखती रहती हूँ ना, आप चेक जमा करते रहते हैं, पैहे बहुत जमा करते हैं।
हाँ जी, हाँ,
हाँ, तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, मैंने इतने पैहे दिए खाने के लिए और मुझे ये उंगलियां मिल रही हैं भाई, ये क्या चेक कर। तो जनाब आप इनके पास बहुत अच्छा खाना होता है, आप स्किप द डिशेज, डोर डैश और ऊबर ईट से भी मंगवा सकते हैं। और जनाब हॉटस्टार $45 में आपके पास पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आ सकती है, आपने सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं प्रोमो कोड से ई आवाज, और आप इनको विजिट करें प्लीज hotstar.com/ca। और जनाब अच्छी गड्डी के लिए किधर जाते हैं मजद भाई, हम शाह अहमद जी के पास,
शाह अहमद
के पास जनाब, जिंदाबाद, उनके पास बेहतरीन गाड़ियां उनके पास और बहुत जबरदस्त जो है उनके पास सेल भी चल रही है।
हाँ जी,
तो बहुत सारे स्पेशल्स हैं, आपने वहां पे जाना है, और जब आप उनसे अच्छी गड्डी लेंगे तो फिर आपका दिल नहीं करेगा कि कोई मोड़ आए तो आप गाड़ी उधर छोड़ आए, आप घर लेके जाएंगे,
घर ले जाएंगे
डायरेक्ट, आप डायरेक्ट मजद भाई डायरेक्ट आप उधर घर लेके जाएंगे। तो इसका इनका नंबर है जी 4168172720। और जनाब रिजूना पे होते हैं अशोक जी, अशोक जी से आपको कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं ऑन 9057907734।
जी साहब, इससे जोर का तो म्यूजिक बज नहीं सकता, और हमें बहुत जोर का म्यूजिक बजाना है ताकि शाजी जी इधर आ जाए, पहुंच गई हैं यहां पर, हमारे साथ बैठी हुई है, और अब आपके लिए ताजा तरीन खबरें
जी। अच्छा मजीद भाई, ये अब क्या हो रहा है ना, कोई कह रहा है जी मैं एस्ट्राजेनेका यूज करूंगा, कोई कह रहा है मैं नहीं करूंगा, हमारी जो नाची है वो कह रही है कि आप जरा थोड़ा सा होल्ड कर लें, हमें रिकमेंडेशन आने दें, हेल्थ कैनेडा कह रहा है जी हमने तो जितनी वैक्सीन अप्रूव की हैं हमने बहुत सावधानी बरती है और उसके बाद हमने अप्रूव किया। तो अब ये इतनी मार्केट के अंदर कंफ्यूजन हो गई है ना, तो आज जो हमारी कैनेडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रीसा टैम है, फिर उनको आज सामने आना ही पड़ा है, उन्होंने कहा भाई आप ये समझें कि एजेंसीज के बीच में कोई टकराव है, कोई क्लैश नहीं है उनके बीच में, एक एजेंसी ने कहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन आप जरा थोड़ा सा ठहर जाएं, हमको अपनी खुद की एक रिसर्च करने दें, एट द सेम टाइम जो हेल्थ कैनेडा ने आपको कहा है दैट इज एब्सोल्यूटली राइट, क्योंकि हेल्थ कैनेडा कोई मेडिसिन ऐसे वैक्सीन अप्रूव नहीं करेगा जो उनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं
होगा। वैसे भी हेल्थ कैनेडा जो है ना ये उनके पास ऑटोनॉमी है, दे आर सेपरेट, दे आर नॉट अंडर एनी गवर्नमेंट प्रेशर,
एनी गवर्नमेंट हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन,
तो वो अपना अपना डिसीजन खुद ही करते हैं।
यस दैट्स राइट दैट्स राइट, वही वही उन्होंने कहा। तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो कैनेडा के अंदर उन्होंने कहा कि देखिए कैनेडा, उन्होंने आज फिर स्टेटिस्टिक्स दिया, उन्होंने कहा कि देखिए कैनेडा के अंदर 300,000 300,000 यानी डोजेस एस्ट्राजेनेका की लोगों को मिली है, किसी एक की भी शिकायत नहीं आई है, किसी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई है, किसी को रैशेज नहीं हुए हैं। और फिर ये
और जो आज जो है एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर विद इन 20 डेज सिम्टम्स भी दिए आपको, विद इन 20 डेज अगर आपके पास ये सिम्टम्स आ गए हैं तो फिर ये शुड बी कंसर्न, अदरवाइज आफ्टर 20 डेज देयर इज नथिंग रॉन्ग।
जी बिल्कुल, तो उन्होंने यही कहा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई थी और ये जो NACI ने जो कहा है कि जरा हम प्रिकॉशन के लिए इसको थोड़ा रोक रहे हैं, वो इसलिए कि वो बाहर की खबरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो यूरोप से उनको आ रही हैं, वेयर एज हेल्थ कैनेडा जो है वो मुल्क के अंदर अपनी असेसमेंट करता है।
और अगर आप ये नोट करें ना कि पूरी दुनिया में मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एस्ट्राजेनेका लोगों को लग चुकी है
हाँ।
तो उसके अंदर मैं ये कहता हूं कि अगर एक भी खराब हो जाए तो भाई इट्स टू मच, बट द ओनली थिंग इज दैट देयर आर जो उनका फ्रैक्शन अगर आप देखें ना परसेंटेज तो वो इतना माइन्यूट इतना कम है कि वो ना होने के बराबर है।
जी जी, अगर फॉर एग्जांपल 10 मिलियन या दो मिलियन लोगों को ही मिला है उसमें से 4-5 डेथ्स हुई हैं तो मतलब अफसोस है उन डेथ्स का, बट दे आर नेग्लिजिबल।
मगर ये वो डेथ्स भी इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, अभी तक प्रूव नहीं कर सका कोई कि यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट है
कहीं उनको जो है पहले कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं थी, वो नहीं ना बात सामने आई है
कि वो जो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस पर ये है कि इट इज नॉट, अभी तक किसी भी कंट्री ने ये प्रूव नहीं किया कि ये जो इसका कॉज जो ब्लड क्लॉट का जो कॉज है वो दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्राजेनेका, अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया।
तो बस आज उन्होंने वही करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि NACI जो है सिर्फ प्रिकॉशनरी स्टेप ले रही है।
हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो उन्होंने भी आज लिया है तो वो भी एस्ट्राजेनेका लिया है
हाँ, और कल भी जो ओंटेरियो की जो हमारी वो ली थी उन्होंने क्रिस्टन एलियट ने जो लिया था वो भी उन्होंने एस्ट्राजेनेका लिया था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्लैश नहीं है उनके बीच में, ये दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम करने का और तरीका है। यानी हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हेल्थ कैनेडा अपने खुद के असेसमेंट्स करती है जबकि NACI जो है यूरोप में क्या हो रहा है उसकी बात सुन के अपना वर्ड देती है, तो दैट इज डिफरेंट। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास आज आने वाली है यूएसए से 1.5 मिलियन डोजेस जो है और ये ट्रक्स के थ्रू आएंगी हमारे पास, तो दिस इज वेरी गुड न्यूज। तो यहां पे जो कैनेडा के डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ है उन्होंने कहा है कि ये जितने भी टेरिटरीज और प्रोविंसेज हैं ये अब उनका हम मंगवा रहे हैं वो वैक्सीन, इनका प्रोगेटिव है कि वो अब इसको यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो वो जैसे ही आएगी अगर आपको फॉरन ले लिया फॉरन ले लें, अगर आपने थोड़ा प्रिकॉशन शो करना है आप कर लें, आपकी मर्जी है। बहरहाल वैक्सीन आर देयर, वो जो शोर मचा हुआ था कि वैक्सीन नहीं है और हमारी सारी कुछ डिले हो रही है, जैसे कि एक दफा डकफोर्ड साहब ने भी कहा था कि बहुत सारे जो है स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये अब आ रही हैं अब नहीं आ रही हैं तो हम जो है उसके लिए प्रेपरेशन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जी अब प्रेपरेशन आप रखें क्योंकि अभी आ रही हैं, अब आपकी मर्जी है, आपको चाहिए आप ले लें और वो ले लें। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि जो है जून तक, वही जो मेरी और आप वाली बात, जून जुलाई तक सबको मिल जाएगा। फाइजर बायोनटेक कह रहे जी हमने बहुत ज्यादा रैंप अप कर दी है अपनी प्रोडक्शन, तो फेडरल गवर्नमेंट ने आज कहा है कि हमको बाय जून 9 मिलियन डोजेस और आएंगी फाइजर बायोनटेक की। दिस इज बिसाइड्स, और ये आपको पता है इन्होंने वादा कितने का किया था माजी भाई, इन्होंने वादा 4 मिलियन का किया था
एग्जैक्टली
और ये भेजेंगे 9 मिलियन राइट। इसके अलावा जो मॉडर्ना है, मॉडर्ना का जो है स्केड्यूल वो भी है तकरीबन इतना ही 4-5 मिलियन के बीच में, और हो सकता है जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं फाइजर को देखते हुए हो सकता है मॉडर्ना भी थोड़ा हमको जो है ज्यादा भेजे,
और उसके साथ साथ एस्ट्राजेनेका की बात कर लें कि 4.4 मिलियन डोजेस उनके भी आएंगे
हाँ जी, वही है, तो वो आते जाएंगे। तो नेशनल एडवाइजरी कमिटी जो है वो अब, लेकिन वो जो ये जो एस्ट्राजेनेका की जो अब आएंगी जो ये वैक्सीन आ रही हैं उसके ऊपर जो अपनी एडवाइज है वो थोड़ा उन्होंने चेंज किया, और उन्होंने कहा है कि वो लोग जो कि 55 के ब्रैकेट में हैं उनको आप जरा भी हॉल्ट कर दें एस्ट्राजेनेका और उनको आप दूसरी दे सकते हैं। अच्छा, इस लाइन में अभी जॉनसन एंड जॉनसन अप्रूव कर दी है कैनेडा ने, वो भी आएगी और इसके बाद फॉलो करेगी नोवावैक्स। हो सकता है कि समर तक नोवावैक्स भी आए, क्योंकि उनके पहले तो जनवरी में फर्स्ट स्टेज के ट्रायल्स हो रहे थे, ऑलरेडी सेकंड जो स्टेज के ट्रायल्स हैं अंडर वे हैं, हो सकता है समर तक थर्ड स्टेज के ट्रायल्स उनके इतने सक्सेसफुल हुए कि वो भी वो भेजना शुरू करें.
एग्जैक्टली.
तो वो भी अप्रूव. तो इसलिए नाउ देर इज नो सच थिंग कि जी कैनेडा के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने काम नहीं किया और वैक्सीन नहीं आई एंड दे शोड लैक्स बिहेवियर एंड ऑल दैट. तो ऐसे नहीं है. अच्छा जी, आज एक सर्वे आया है लेजर एंड एसोसिएशन फॉर कैनेडियन स्टडीज का, और बस वही बात है कि उन्होंने जब पूछा कि आप अपने आप खुद को और अपनी फैमिलीज को एस्ट्राजेनेका लगाना चाहेंगे कि नहीं, तो 53% ने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि हम एस्ट्राजेनेका लें. 82% ने कहा जी कि हम फाइजर बायोनटेक को प्रेफर करते हैं, और इसी तरह जो है 77% ने कहा कि हम मॉडर्ना जो है उसको हम प्रेफर करते हैं, तो हम इसके लिए जाएंगे. और इसके साथ साथ जो है फिर अभी वही बात जो अभी हमने की कि जिस वक्त जॉनसन एंड जॉनसन आ जाएगी तो उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आप जॉनसन एंड जॉनसन को प्रेफर करते हैं, तो लार्ज मेजोरिटी ने कहा कि डेफिनेटली एस्ट्राजेनेका के ऊपर तो हम प्रेफर करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन को, ऑल द मोर रीजन बिकॉज वो सिर्फ वन डोज वैक्सीन है, तो इसलिए हम उसको जो है इसके ऊपर प्रेफर करेंगे. तो ये काफी मतलब जो है ना इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है, लेकिन बात वही है कि वी शुड गो बाय व्हाट हेल्थ कैनेडा सेज,
हेल्थ व्हाटएवर इज अवेलेबल लेट्स डू इट.
वही जैसे क्रिस्टिन एलियट ने कहा कल,
कि ये हैविंग अ वैक्सीन डन इज बेटर देन नो वैक्सीन,
नो वैक्सीन एट ऑल. हाँ जी हाँ जी,
तो आपकी प्रोटेक्शन है,
प्रोटेक्शन है. अच्छा जनाब, आज एक बहुत ही मेजर एक वाकया बहुत दिनों से चल रहा था, और जो है ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन साहब जो हैं उनसे पूछ रहे थे कि भाई अब ये जो कैनेडियन फोर्सेस अब जो इराक के अंदर हैं उनका क्या फ्यूचर है, आप उनको वापस बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे. तो पहले एक दफा एक खबर आई थी जो है डिफेंस कैनेडा से कि शायद हमारे ये जो लोग हैं 850 जो वहां पे ज्यादातर हेल्प कर रहे हैं इन ट्रेनिंग एंड ऑल उस वहां पे, तो वो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस बुलाने शुरू कर देंगे. आज उन्होंने कहा है कि नहीं, वो वहां पे रहेंगे अंटिल जो है नेक्स्ट मार्च वो वहां पे रहेंगे. और ये सारा जो ऑपरेशन था ये शुरू हुआ था अक्टूबर 2014 में, और चाहती नहीं है ये सारी नेटो की या यूरोपियन फोर्सेस जो है वहां से इराक से निकला जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनको डर है कि ईरान जो है वो कहीं अपना जो है बहुत ज्यादा आगे इन्फ्लुएंस ना फैला ले, क्योंकि वहां के जो शिया ग्रुप्स हैं वो जाहिर है दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान. तो इनको लगता है कि अगर वहां पे बहुत डरते हैं पता नहीं क्यों ये यूरोपियंस जो है शिया रजीम्स जो है उनसे, तो वो चाहते नहीं है कि यहां पे कोई शिया रजीम जो है वो अपने पैर इतने जो है वो कर ले. तो इसलिए कैनेडा ने भी फैसला किया कि वो अपने जो 850 ट्रुप्स हैं वहां पे रखेंगे. हवावी की जो CFO हैं मेंग वॉन्ग ज़ाऊ, जिनको कि आज हमने अभी तक पकड़ा हुआ है, आज उसके अंदर एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है, और उसमें ये हुआ है कि उनके जो लॉयर हैं गिब वैन अर्ट, उन्होंने आज एक बहुत ही लीगल एक पहलू जो है वो सामने लेकर आए हैं. वो कहते हैं जी कि कनाडा की कोर्ट्स जो हैं उन्होंने जो इनको स्टे का जो एक्सट्रेडिशन जो प्रोसीडिंग्स है उनको स्टे किया है, ये इंटरनेशनल लॉ की ब्रीच है. क्योंकि क्या होता है कि केसेस आर कंडक्टेड अराउंड रिक्वेस्ट. तो ये जो केस है मेंग वॉन्ग ज़ाऊ का, ये जो रिक्वेस्ट यूएसए की तरफ से आई है, द रिक्वेस्ट इटसेल्फ इज अनलॉफुल. तो एज अ रिजल्ट अंडर इंटरनेशनल लॉज जो हैं, जो हमारे पे प्रेशर अमेरिका ने डाला कि इनको पकड़े, अंडर दैट यू नो क्लॉज हम मेन वॉन्ग ज़ाऊ को रख नहीं सकते हैं. अमेरिका ने इनको बेसिकली कहा था कि तुमने जो HSBC के साथ जो डील अपनी की है वो ईरान को फायदा देती है, जबकि मेन वॉन्ग ज़ाऊ ने कहा था कि कोई ईरान की डीलिंग्स उसमें थी ही नहीं. तो इसलिए उन्होंने डिनाई किए थे चार्जेस. तो आज उनके लॉयर ने ये कहा है, आज ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जो लॉयर होगा ना मजदूर उसको समझ आएगा. वो कहता है कि ये जो आप करते हैं दीज केसेस कंडक्ट अराउंड रिक्वेस्ट, ये जो केस है इसका इसमें जो दैट इज अनलॉफुल, बट हियर द रिक्वेस्ट इटसेल्फ इज अनलॉफुल. तो इसलिए अंडर इंटरनेशनल लॉ आप इसको नहीं रख सकते हैं.
सही.
तो ये उसने आज बड़ा पॉइंट दिया, तो अब देखेंगे इसके ऊपर जो है क्या काम होएगा. अच्छा जी, आज एक अजीब और गरीब काम हुआ है, और ऑन्टेरियो जो प्रोविंशियल पुलिस है OPP उसने कहा है, एक औरत जी हाईवे 401 पे जा रही थी और एक और गाड़ी जो है उसका टायर उड़ गया, और आके वही जो आपका सेंटेंस है आपका जो सेंटेंस है वो जो आप कहते हैं कि वो जो उड़ता हुआ टायर होता है वो पागल होता है बिल्कुल
yes, एकदम पागल।
तो वो उड़ता हुआ इस औरत की जो है वो विंड स्क्रीन पे आके लगा, लेकिन बहुत मिराकुलसली औरत बच गई।
वेरी लकी,
हाँ वेरी लकी। इसको ओपीपी ने कहा है कि शी इज वेरी वेरी लकी। अगर थोड़ा सा भी ये उस साइड पे होता जहां पे कि ये बैठी हुई थी एग्जैक्टली इसके मुंह पे आ गए तो बस ये गई थी फिर इसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती। तो ये बच गई है और उस औरत ने भी बड़ा ये हॉरिफिक अपना जो है ये शेयर किया है आज इंसिडेंट के कैसे वो उड़ता हुआ आया टायर और वो सारी विंडशील्ड टूट गई और यू नो इट वाज वो। तो इसको बस माइनर सी चेंजेस आई हैं। अच्छा जनाब, आज एक बहुत ही अजीब काम हुआ है म्यांमार में। बहुत दिनों से वो जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आज अब प्रोटेस्टर्स ने क्या करना शुरू कर दिया माजिद भाई, सड़कों के ऊपर कचरे फेंकने शुरू कर दिए। कचरे के पाइल्स ऑफ कचरा जो है वो फेंकना शुरू कर दिया सड़कों के ऊपर। और मिलिट्री जो है उसके उसको वो कह रहे हैं कि मिलिट्री की वजह से जो इन्होंने इतने हमारे पे पिछले दो महीने से ये जो चल रहे हैं इतने हम पे जुल्म किए हैं कि उसके अंदर ओवर 500 तकरीबन 512 लोगों की डेथ्स हो गई हैं। ये जो पुलिस जो है बैटन चार्ज कर रही है और दूसरा कुछ जो कुछ कर रही है, और वो कहते हैं कि वही जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी सूकी की उसको अब वापस लेकर आए। मिलिट्री कहती है कि इसने बहुत सारे वायलेशंस किए हैं तो इसलिए हम जो है इसको नहीं लाने देते। तो वो प्रोटेस्ट जो है कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं और आज सड़कों के ऊपर काफी जो है कचरा वगैरह देखा गया। टर्की के अंदर जी जो प्रेसिडेंट अर्दोगान हैं उन्होंने कहा है कि जो टर्की के अंदर केसेस हैं कोविड 19 के बेतहाशा चल रहे हैं। पिछले दिनों में कुछ उन्होंने रिलैक्स कर दिए थे अंकरा वगैरह में, तो अब उन्होंने कहा है कि 81 प्रोविंसेस जो हैं टर्की की उसमें से 58 के अंदर केसेस जो हैं बे इंतहा हाई हो गए हैं। एज अ रिजल्ट दे हैव अनाउंस्ड लॉकडाउन्स एंड दे हैव यू नो सेंट ऑल दीज 58 स्टेट्स अंडर रेड जोन।
सही।
और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है इनको फॉलो किया जाएगा और वो कह रहे हैं ये लॉकडाउन जो है सैटरडे और संडे को भी एनफोर्स रहेंगे, इनफैक्ट कर्फ्यू रहेगा सैटरडेज और संडेज को, तो बिल्कुल जो है लोग यहां पे ज्यादा मूवमेंट्स ना करें। ये यूके के अंदर एक माजिद भाई बहुत ही अब एक यूनिक सा वो काम कर रहे हैं, वो ये है कि एक 6 फुट की वॉल बना रहे हैं वो लोग और उसके ऊपर वो हार्ट्स बना रहे हैं। और उन्होंने कोई ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के अंदर तकरीबन 145,000 लोग जिनका कि हमें पता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि 145 लोगों की डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। एज अ रिजल्ट ईच हार्ट दैट वी आर मेकिंग ऑन दिस वॉल रिप्रेजेंट्स 1 पर्सन हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक।
वेरी टची।
हाँ, तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, ये देखें जरा तस्वीर देखें, ये तो ये वो सारे जो है ना वो वहां पे बनाए। वो कह रहे हैं कि अभी हमको बहुत सारे दिन लगेंगे बिकॉज 145,000 हार्ट्स बनाने हैं इन्होंने, तो इट विल टेक देम फ्यू डेज, लेकिन वो कह रहे हैं कि वी आर पेइंग देम ट्रिब्यूट ऑल दोज पीपल दैट वी हैव लॉस्ट। अच्छा जनाब माजिद भाई, वो आपने लतीफा वो आपने कहावत सुनी है आप बैल मुझे मार,
सुने आप बैल मुझे मार, यस
आप बैल मुझे मार, उसमें क्या होता है आप बैल को बुलाते हैं आजा भाई मैं तेरे से ज्यादा दिस एग्जैक्टली हैज हैपन। ये माफिया एक चीफ था यहां पे इटली का माजद भाई, इसको पुलिस कोई इतना कोई ढूंढ रही थी इतना ढूंढ रही थी, ये आदमी ऐसे गायब इटली से हो गया। इसको सेंटेंस दी गई थी, इस आदमी का नाम है मर्क फेरन क्लॉड बायरेट और इसकी उम्र 53 ईयर्स है और इसको ड्रग ट्रैफिकिंग और इस तरह बहुत सारे गलत कामों में इटालियन कोर्ट ने इसको जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट दी थी और उसको कहा था कि इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इज अ वेरी डेंजरस मैन, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये सबसे बड़ा जो नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का जो रैकेट है जो ड्रैंगेटा जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चलाता है। ये जी इटली से ऐसे गायब हुआ जैसे इंसान के सर से बाल गायब हो जाते हैं माइफ, और ये मिलने का नहीं था। अब उसको इटालियन पुलिस ने पकड़ लिया है। अच्छा जी, पकड़ा कैसे है? आ बैल मुझे मार।
हाँ, ये
जब हो रही ये सारा जब ये कोविड का जमाना चल रहा था तो ये तो छुपके घर में बैठा हुआ था, ये भाग के चला गया था डोमिनिक रिपब्लिक में। और वो आपको पता है ये छोटी सी जगह है, लोगों ने इटली में यही समझा होगा कि भाई ये कहां पे, हालांकि इसके लिए रेड अलर्ट जारी किए हुए थे और बड़ा कुछ। ये जब अब ये कोविड के मामले शुरू हुए तो इसने और इसकी बीवी जो है उसने बनानी शुरू की जी इटालियन कुकिंग के ऊपर वीडियोस और वो यूट्यूब पे डालने की।
वेरी स्मार्ट गाय
यूट्यूब पे नहीं, डिड इट वेरी स्मार्टली। आप सुने हुआ क्या है, आप सुने, दिस इज सो हिलेरियस। इन्होंने जी वो इटालियन कुकिंग की वीडियोस जो है यूट्यूब पर डालनी शुरू की। इसकी बीवी बड़ी स्मार्ट थी, इसकी बीवी ने उसके चेहरे के ऊपर पूरा यहां तक जो है सिर्फ इसकी टी शर्ट और वो डोले और वो बाजू नजर आते थे यहां तक, बट स्टूपिडली इनफ शी डिड नॉट कवर हिज हैंड्स। इसके हैंड्स के ऊपर स्पेशल टाइप के टैटूज बने हुए हैं,
उससे पहचान दिया जाए।
उससे इटालियन पुलिस ने इंटरपोल को बोला और इंटरपोल ने जी इसको पकड़ लिया बिकॉज ऑफ हिज टैटूस. क्या स्मार्ट
कुछ काम, तो निशानी थी ना इसके हाथ पर.
बस माजिद भाई क्या स्मार्ट काम किया.
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट अ स्मार्ट गाय,
व्हाट अ स्मार्ट गाय. देख लें आप, बैल मुझे मार. अच्छा जनाब, फ्रांस के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ओलिवियर वीरन, वो कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइजेशन जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि लो रहें, क्योंकि फ्रांस के अंदर अब ये डर पैदा हो गया है कि थर्ड वेव इज ऑलरेडी देयर. लोग जो हैं बिल्कुल ये फॉलो इनके एसओपीज नहीं कर रहे हैं. थर्ड वेव आ गई है, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स और नर्सेज भी कम होते जा रहे हैं. हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है कि हम लोगों को बार बार कह रहे हैं आप एसओपीज फॉलो करें, अपने घरों में रहें, अननेसेसरीली बाहर ना जाएं, क्योंकि हम ये चाहते नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल्स एक दफा से फिर ओवरवेल्म हुए. उन्होंने आज बड़ी वार्निंग दी है. उन्होंने कहा कि अगर ये जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ये ओवरवेल्म हो गए, जो कि ये कह रहे हैं कि हम अनदर 24 to 48 hours हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशन, अदरवाइज फिर हमको बहुत जो है सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे. दैट कैन also be an absolute lockdown,
total lockdown, yeah.
total lockdown जिसको बोलते हैं, total lockdowns भी हो सकते हैं. अच्छा भाई, रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है और ये भी बड़ी फनी रिपोर्ट है. आप देखें जरा हम अपने मुल्कों में कितना करते हैं, ओ जी फ्री दी रोटी मिल जाए तो लोग नस के आना शुरू कर देते हैं. स्विट्जरलैंड में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम आपको फ्री की सेल्फ टेस्ट किट्स दे रहे हैं टू असेस एट होम कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं है. माजिद भाई स्विट्जरलैंड में इतने पुखे हैं लोग, इतने पुखे हैं कि उन्होंने लाइनें तोड़ दी उन्होंने फार्मेसियों की और मरे जा रहे हैं वो फ्री लेने के लिए. आज स्विस गवर्नमेंट ने कहा है हर किसी को मिलेगी, इतना ज्यादा ओवरवेल्म ना करें फार्मेसीज को. उन्होंने आज हाथ जोड़े, उन्होंने कहा भाई जी तुहाडे घर पहुंचा देंगे, फार्मेसियां ना तोड़ो साड़ी, फार्मेसियां ना तोड़े हम आपके घर पहुंचाएंगे. आज स्विस गवर्नमेंट ने कहा
ठीक.
उन्होंने कहा आप अपने जो है ऑनलाइन ये रिक्वेस्टें डाल दें किस किस को चाहिए है तो हम आपके घरों में पहुंचाएंगे प्लीज, लेकिन फार्मेसीज में आके आप इतना धक्कम पील और वो सारा कुछ ना करो. ये बहुत ज्यादा जो है इट इज बिकमिंग टू मच. अच्छा जी, फ्रांस की जो है ना बड़ी आजकल आपको पता ना गर्मा गर्म खबरें आती हैं हमारे पास. तो जैसे वो कल कह दिया कि हम 33 इयर्स से इस कंपनी को मॉनिटर कर रहे थे, हम कह रहे थे लोगों को मरने दो कोई बात नहीं है, 33 इयर्स के बाद हम आपके खिलाफ जो एक्शन लेंगे. वो जो वो मीडिएटर वो जो पिल लेती थी लड़कियां बेचारी स्विमिंग के लिए, याद ठीक है जी. अच्छा जी, आज फिर से तो जो है एक और जो है वो काम हुआ है जी फ्रांस का. उससे पहले आपको पता ही है फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई किलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ये जो केस हो गया था फ्रांस के ऊपर. तो जनाब आज क्या हुआ है कि आज भी फ्रांस के अंदर जो है एक फ्रांस के ऊपर एक था कि माली में जनवरी 3 पे सेंट्रल माली में फ्रेंच जो तैयारे हैं उन्होंने अटैक्स किए थे, ये कह के कि यहां पे रेबल्स हैं और टेररिस्ट हैं. हालांकि वहां पे एक फैमिली की शादी हो रही थी और उस शादी के ऊपर जब इन्होंने अटैक किया बेशुमार लोग जो हैं सीरियसली जख्मी हो गए और 20 के करीब लोग मर गए. और फ्रेंच कोर्ट्स को बेशुमार शिकायतें गईं और फ्रेंच गवर्नमेंट ने या कोर्ट्स ने कोई नहीं लिया. तो टुडे यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है इनकी, उसने कहा है कि फ्रांस ने ये जो विलेज ऑफ बूंडी के अंदर किया था ये एक जो है किलिंग है, डिलिबरेट किलिंग है. क्योंकि वो कहते हैं जी हमने वहां पे लोगों से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ली है और उन्होंने कहा है जी कि यहां पे कोई टेररिस्ट छुपे हुए नहीं थे, वो ये थे तो यहां पे ये थे. तो अब वो फ्रेंच गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि भई तुम अपने मुल्क में प्रोब चलाओ और तुम पूछो अपनी फ्रेंच जो एयरफोर्स है कि उसने बिना किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ये कैसे जाके अटैक्स किए. वैसे ही आपने किताब पढ़ी है जोसेफ कॉनरेड की, बहुत बड़े राइटर हैं जोसेफ कॉनरेड, आपको पता ही है. उन्होंने किताब लिखी है फ्रांस के ऊपर द ड्यूल.
अच्छा
आपने वो पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो माजिद भाई जरूर पढ़ें. आप जिस वक्त वो किताब पढ़ते हैं ना वैसे तो वो नेपोलियन ईरा के ऊपर है जोसेफ कॉनरेड की जो वो किताब है, लेकिन उसके अंदर आपको फ्रेंच साइकी कैसे काम करती है वो आपको पता चलेगा कि बस शक हो गया तो इसको उठा लिया. यानी हम कहते हैं ना कि ये तो सारे काम जो है तालिबान करते हैं या आइसिस वाले करते हैं, तो हम तो जी फ्रेंच हैं तो बड़ी सेल्टिक रेस है और हम तो यूरोप के अंदर बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं. यू विल फाइंड आउट द साइकी ऑफ द फ्रेंच पीपल, हाउ डू दे वर्क. اتنی کوئی خوبصورت کتاب ہے یہ جوزف کانریڈ کی، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اور یہ جو تھی اس نے لکھی تھی 1908 میں، اور پھر اس کے کتنے ہی ورژنز آئے تھے، صرف اس لیے ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دیز پیپل دے ورک اینڈ دے تھنک اینڈ ہاؤ ڈو دے مینوور تھنگز اینڈ اس طرح کر کے.
واو
بہت بیوٹیفل کتاب ہے یہ، اگر آپ پڑھیں گے تو. تو وہی جب آج میں یہ پڑھ رہی تھی نا، یہ جو پچھلے کئی دنوں سے میں، تو مجھے یہ جوزف کانریڈ کی کتاب یاد آتی جا رہی تھی کہ اپنی غلطی نہیں ماننی ہم نے. ٹھیک ہے جی، تو ویسے کہنا کہ جی وی بلانگ ٹو دا فرسٹ ورلڈ، اور جو ہے وہ پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ بڑا جو ہے خراب سلوک ہو رہا ہے، اور چائنا میں بڑا خراب سلوک ہو رہا ہے، لیکن ہم نے جو کیا کیا اس کے اوپر ہم نے نظر نہیں ڈالنی.
ٹھیک
ہے جی ہمارے بھائی، بالکل آپ نے نہیں ڈالی، اپنے گریبان میں بالکل نہیں جانا، بالکل نہیں جانا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، رائٹرز کی آج ایک خبر ہے، اور رائٹرز کی اس خبر کے مطابق افغانستان کے اندر جو جلال آباد کا ایریا ہے وہاں پہ وہ پولیو ویکسینیشن جو ہے اس کی کیمپین پھر سے یونائٹیڈ نیشنز نے شروع کر دی ہے. تو وہاں پہ بیچاری تین عورتیں جو فیمیلز تھیں جو کہ وہاں پہ دے رہی تھیں ان کو پولیو کے قطرے بچوں کو، ان کو مار دیا ہے وہاں پہ. تو اس کے اوپر جو ہے آج یونائٹیڈ نیشنز نے بڑا شور مچایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو ٹوٹل 5 ڈے کی کیمپین تھی، اور اس میں بھی آپ نے وہ ان عورتوں کو مار دیا ہے. تو یہ اب مطلب ہے کچھ ہی دنیا میں، کیونکہ کنٹریز رہ گئے نا مجھ بھائی جہاں پہ کہ پولیو ہے.
Exactly.
تو یہ افغانستان جو ہے ان میں سے ایک ہے، پاکستان میں بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں تو اس لیے. اچھا جناب، جرمنی کے جو دو شہر ہیں، ایک برلن اور ایک جو ہے میونک، وہاں پہ بھی جو ہے ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین ہے اس کو ہولڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایکچولی یہاں پہ جرمنی کے اندر کچھ کیسز ہوئے ہیں،
35 کیسز
ہوئے ہیں، اور اس میں سے وہ کہتے ہیں جی 9 ہیو ڈائڈ. تو اس لیے اب ان کا کنسرن آ گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری تو جو ہم نے جن کو ایسٹرازینیکا دی تھی، دیٹ واز دیر واز اے وائڈ رینج آف ایج، یعنی کہ ایج کا جو بریکٹ تھا کافی بڑا تھا. ایک جو